विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम् यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिणै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरुवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृदुपथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचुर्पणक्षा प्रियविरहरुषारोपितभ्रूजो त्रस्तावदुर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रो अतुलितबलधामं हेमशैलाहृदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णो मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। राधा नागरसो जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो, श्री वृंदावन को दास, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन के नाशत विघ्न। बोलो श्री वृंदावन
बिहारी लाल की जय।
जय जय
श्री राधे।
आइए कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के नाम का उच्चारण करें।
कृष्णा कृष्णा
मुकुंदा जनार्दना,
कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना, कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना,
कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना,
कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दना,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद नारायण रे,
कृष्ण गोविंद
के कीर्तन में मचता जल में मुरली ध्वनि का वह शोर यहाँ मुरली ध्वनि का वह शोर यहाँ मुरली ध्वनि का वह शोर मुरली ध्वनि का वह शोर हो मुरली ध्वनि का वह शोर तरुराधे कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का वह शोर यहाँ मुरली ध्वनि का वह शोर अब भी चित चोर यहाँ रहता अब भी चित चोर यहाँ रहता अब भी चित चोर और रहता अब भी चित चोर और रहता अब भी चित चोर कृष्णा कृष्णा मुकुंदा जनार्दन गाइए कृष्णा कृष्णा
श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत कल के कथा प्रसंग में आप सभी श्रवण कर रहे थे। भीष्म पितामह का दिव्य चरित्र जिनको भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे थे। किस देव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनुमिह। भीष्म पितामह ने भगवान को यह निवेदन किया था कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो तो आपने कोई मेरे ऊपर एहसान नहीं किया। देखिए भक्त का कितना प्रेम ठाकुर से होता है और प्रेम में तो सारे नियम भी टूट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा भगवान को कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने ले आए हो क्योंकि मैंने आपकी प्रतीक्षा की थी, तो आपको मुझे दर्शन देने तो आना ही था। तो भगवान की प्रतीक्षा निरंतर अपने मन में करते रहो क्योंकि भगवान की कृपा का कोई समय निश्चित नहीं होता है। जैसे अतिथि का कोई समय निश्चित, अतिथि इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है कब घर में आए, तो हम उसका स्वागत करते हैं कि नहीं। इसलिए परमात्मा की कृपा का भी कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि भगवान से मिलाए रखो। किस क्षण भगवान की कृपा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान की कृपा से चूक न जाएं। वो तो कृपा करने के लिए बैठा है, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। एक भक्त ने भगवान के लिए कहा है यदि भगवान अपने भक्त पर कृपा न करते तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी अदालत में कौन आता, वो कृपा करते हैं। इसलिए भक्त उनके दरबार में आता है। ग्यारह श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करके अपनी भावना को व्यक्त किया था। भीष्म का अर्थ होता है, भीष्म माने ये चंचल मन, थोड़ा ध्यान दें, ये मन हमारा जो है ये भीष्म है जो बड़ा भयंकर है और मन के ये पांच विकार हैं, ध्यान दें, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये इस मन में बैठे हैं। इसलिए इंसान का मन हमेशा उद्विग्न रहता है, कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह से, कभी अहंकार से। किसी व्यक्ति के घर 5 मेहमान आए। उसने बहुत स्वागत किया। अब घर में कोई मेहमान आए तो स्वागत तो व्यक्ति करता है अपनी हैसियत के अनुसार, और ये चाहता है व्यक्ति कि हमारे घर से मेहमान खुश होकर के जाए, प्रसन्न होकर के जाए। अब यदि कोई ऐसा मेहमान आ जाए कि आया तो मेहमान बनकर लेकिन घर में ही रहना चाहे, तो तब फिर तकलीफ होती है। कहने का अभिप्राय है, उस व्यक्ति के घर में मेहमान आए, उस व्यक्ति ने मेहमान की बहुत खातिरदारी की, लेकिन जब वो घर में ही टिक गए तो अब परेशानी होने लगे। वो व्यक्ति संत के पास गया और जाकर के उसने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि महाराज श्री, घर में मेहमान आए हुए हैं, 5 ठहरे हुए, मैंने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन अब तो वो जाने का नाम ही नहीं लेते, अब तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी है। तो संत ने कहा तो तू ऐसा कर, उनका अपमान करना शुरू कर दे। प्रेम से कहिए श्री राधे, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। जब पहला दिन हुआ और 5 मेहमान में से एक मेहमान ने जब कोई वस्तु मांगी, तो जो वस्तु वो मांगता तो वो व्यक्ति कह देता कि मैं अभी पूजा में हूं, प्रभु के नाम जप में लगा हूं, अभी मेरे पास थोड़ा समय नहीं है, बार बार उसे टाल देता। तो उस व्यक्ति ने देखा कि अब तो यहां से चलना ही ठीक है, तो वो पहला दिन ही वहां से चला गया। दूसरे दिन दूसरे मेहमान को बोले आधा भोजन देना शुरू कर दिया, वो भी वहां से भागा। तीसरे दिन तीसरे मेहमान को बोले बिस्तर भी सोने के लिए नहीं दिया, वो भी वहां से भागा। चौथा दिन बोले ऊपर उस मेहमान के पानी डाल दिया, बोले वो भी वहां से भागा। लेकिन 5वां मेहमान उपेक्षा करने के बाद भी, तिरस्कार करने के बाद भी वहां से हटा नहीं। तो फिर वो संत के पास गया और कहा कि गुरुदेव आपने उपाय मुझे बताया था कि उनकी उनका अपमान करना शुरू कर दो, तो मैंने वैसा ही उपाय किया, 4 तो चले गए लेकिन एक डटा हुआ है। तो संत ने कहा तू ऐसा कर, वो जाएगा तो है नहीं, जब डटाई हुआ है तो तू ऐसा कर कि उसे तू अपने कोठी के बाहर जो सर्वेंट का कमरा है ना, रूम है ना, उसमें उसे ठहरा दे। उसने वैसा ही किया। ये तो केवल एक कथा है, लेकिन इस कथा को थोड़ा समझें। हमारे मन में भी ये 5 मेहमान बैठे हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो मन के विकार हैं। बोले काम विकार जब व्यक्ति को तंग करे, तो जैसे उसने युक्ति निकाली थी कि जो वस्तु मांगता था तो पहले मेहमान को वो कहता कि अभी मैं पूजा में हूं, अभी मैं कुछ पाठ में हूं, तो जब जब मन में वासना जागृत हो क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं। जब जब ये काम सताए, वासना सताए, तब तब माला लेकर के हाथ में ठाकुर जी का नाम जप करना शुरू कर दो, अपने इष्ट का नाम जप करो, क्योंकि जहां प्रभु का नाम है वहां पर ये काम नहीं टिकता। दूसरे मेहमान को आधा भोजन दिया, ये क्रोध, इसे कभी भरपेट भोजन नहीं देना, प्रेम से कहो श्री राधे। यदि क्योंकि क्रोध तो आता है, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध भी है, कभी व्यक्ति अकारण भी क्रोध करता है और कभी किसी कारण से भी हमें क्रोध आ जाता है। तो आधा भोजन देने का मतलब बोले अगर आपको क्रोध आए तो क्रोध को यह कहना कि अब मैं किसी व्यक्ति पर, यदि आपको परिवार में या अपने किसी कार्य क्षेत्र में इस क्रोध से यदि बचना हो तो क्रोध को यह कहना, क्रोध करते समय कि मैं तेरे पर कल क्रोध करूंगा, कल पर क्रोध को छोड़ देना। तो आप देखिए, कल पर यदि आप क्रोध को छोड़ देंगे कि कल तेरे से मैं क्रोध करूंगा, तो निश्चित आप क्रोध पर भी काबू पा लेंगे, क्रोध भी आपको छोड़ेगा। वैसे तो क्रोध की कोई दवा नहीं है, किसी केमिस्ट की दुकान पर सबकी दवा मिलती है लेकिन क्रोध की कोई दवा नहीं मिलती है। लेकिन संत गुरुजन इस बात की युक्ति बता देते हैं कैसे हमें इस क्रोध को कम करना है। इसे आधा भोजन दो, कल पर टाल दो, कल देंगे, कल क्रोध करेंगे। लोभ, बोले लोभ को बिस्तर ही मत दो। जब जब लोभ आए तो मन में उदारता रखो, दान की भावना अपने अंदर दो, उसे स्थान ही मत दो। जितना व्यक्ति के अंदर उदारता होगी उतना ये लोभ कम होता है। लोभ को कम करने के लिए व्यक्ति उदार बनता है तब ये लोभ को जीत सकता है। और मोह, बोले चौथे मेहमान पर पानी डाला, इस मोह की उपेक्षा करो। जहां जहां मोह तुम्हारा टिका हो, जहां जहां तुम्हारा मोह हो वहां वहां उससे अपेक्षा मत करो, उसकी उपेक्षा करो, पानी डालो। लेकिन पांचवा जो है वो है अहंकार, ये मन में। ये पांचवा मेहमान तो निकलने ही वाला नहीं है, आप जितना इसे निकालना चाहेंगे ये डटा हुआ है, ये अहंकार, ये ईगो, ये मत, ये अभिमान, ये कैसे दूर हो? बोलिए दूर माने जाएगा तो नहीं, लेकिन इसे सर्वेंट का रूम दे दो। जैसे उस व्यक्ति ने पांचवें मेहमान को कौन सा कमरा दिया था? नौकर का कमरा दिया था। कहने का अभिप्राय कि इस अहंकार को, इस अभिमान को यदि अपने अंदर से कम करना हो तो सेवा के कार्य में लग जाओ। जितना व्यक्ति अपने इस शरीर से सेवा, क्योंकि सेवा से ही व्यक्ति दूसरों की सेवा की भावना जब हमारे अंदर आती है तब व्यक्ति इस अभिमान को जीत पाएगा। सेवा से हम इस ईगो को कम कर सकते हैं, क्योंकि सेवा से व्यक्ति के अंदर विनम्र भाव आता है, सरलता आती है, तब इस अहंकार को, अभिमान को व्यक्ति जीत सकता है। ये भीष्म माने अति भयंकर जो मन है, ये भीष्म है। इस प्रकार से एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की भागवत में स्तुति करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगव विभू। हे गोविंद, आज मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ कर रहा हूं, आप मेरी इस बेटी को स्वीकार करें। तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से बोले कि बाबा, आप तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपकी कौन बेटी, और जिसकी शादी की चिंता भी आपको है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि इति मति, ये मेरी बुद्धि, मेरी क्वारी बेटी है। आज तक हे गोविंद, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, इसने किसी का भी चिंतन नहीं किया, निरंतर ये आपका ही चिंतन करती रही, लेकिन मन भयंकर है और मेरा अंत समय आ गया है, मैं मृत्यु के सन्निकट हूं, कहीं ऐसा न हो कि मेरी बुद्धि को ये मन न खींच ले, क्योंकि मन संकल्प विकल्प शक्ति है और बुद्धि निर्णय शक्ति है। मन किसी बात पर निर्णय नहीं ले पाता है, किसी बात का यदि निर्णय होता है तो बुद्धि से ही होगा। तो अंत समय इस मन सहित बुद्धि को हे गोविंद, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि आप अति सुंदर हैं, आपका एक नाम है श्याम सुंदर। कि त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रवि कर गौरवरांबरम दधा बपुरन कुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे न वद्या। तो अति सुंदर हे गोविंद आप हैं, मैं अपनी इस बुद्धि रूपी कन्या को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप मेरी इस बेटी को स्वीकार करें। तो 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करके भीष्म पितामह ने भगवान को प्रसन्न किया और देह से प्राण निकले, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, देवता जय जयकार करने लगे हैं और भगवान की स्तुति करते करते भीष्म पितामह भगवान के परम धाम को गए। लेकिन भीष्म पितामह के बराबर कौन भाग्यशाली हो सकता है कि स्वयं अंतिम संस्कार जब भीष्म पितामह का हो रहा था तो कृष्ण खड़े थे, जब चिता जल रही थी स्वयं कृष्ण खड़े थे, पांचों पांडवों के द्वारा भगवान ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार कराया और भगवान भीष्म को दर्शन देकर कृतार्थ करके द्वारिका की ओर पधारे हैं। इधर महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान उस जन्म उत्सव में पधारे और अर्जुन को साथ लेकर के श्री कृष्ण पुनः द्वारिका गए। लेकिन भगवान को गए हुए द्वारिका 7 महीने हो गए, अर्जुन नहीं लौटा। जब अर्जुन द्वारिका में नहीं आए तो युधिष्ठिर जी महाराज को अनेक प्रकार के हस्तनापुर में अपशगुन दिखाई दिए, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जब कोई संकट आने वाला होता है तो शास्त्र कहता है कि पूर्व से उसे अपशगुन भी दिखाई देते हैं। देखिए, जैसे हमको शगुन हम दिखाई देते हैं, शगुन होते हैं ना, ऐसे ही अपशगुन भी दिखाई देते हैं। तो भागवत में अपशगुन ये बताया कि भगवान का दर्शन करने के लिए जब गए हैं मंदिर में युधिष्ठिर, तो भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू गिरते हुए देखा कि मानो कृष्ण की मूर्ति रो रही हो। दिन में आकाश में से तारे टूट टूट करके गिरते हुए युधिष्ठिर जी को दिखाई दिए हैं। प्रकृति ने भी अपने नियम को त्याग दिया, वर्षा में वर्षा नहीं होती, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, लोग अधर्म से अपनी आजीविका चलाने लगे, पाप में लोगों की रुचि बढ़ने लगी। ये जब अपशगुन और अपनी आंखों से दृश्य महाराज ने देखा तो पास में खड़े थे भीम। भीम को युधिष्ठिर जी ने कहा कि गता सप्ता धुना मासा भीम से न तवानुज। देखो भीम, अर्जुन को गए हुए भी 7 महीने हो गए, अभी तक अर्जुन द्वारिका से लौटा नहीं है और तुम देख रहे हो कितना भयानक समय उपस्थित हुआ है हमारे सामने। तो आपस में भीम से युधिष्ठिर वार्तालाप कर रहे थे कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को जब देखा तो नीचे की ओर गर्दन है, मैले कपड़े पहन रखे हैं। कहा युधिष्ठिर जी ने कि अर्जुन, ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई? ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये तुम्हारे मैले कपड़े, निस्तेज चेहरा, सब द्वारिका में ठीक है ना? क्या किसी ब्राह्मण को दान देने का संकल्प तुमने कर दिया और नहीं कर सका तब तुझे कष्ट है? या शरण में आने वाले किसी स्त्री की, बालक की तू रक्षा नहीं कर पाया तब तुझे दुख है? मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, तो द्वारिका में ठीक है ना? जब भगवान का नाम लिया तो अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और कहा कि वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। आंखों में आंसू भर करके अर्जुन ने कहा कि दादा, आज हमें हरि रूपी बंधु ने ठग लिया है। मैं अपने आप को गांडीवधारी कहा करता था, लेकिन आज मुझे ज्ञान हुआ कि वो सब शक्ति कृष्ण की थी। और वो कृष्ण जिनकी आज्ञा से मैं द्वारिका से स्त्रियों को लेकर के आ रहा था, वही गांडी, वही अर्जुन, लेकिन उन भीलों ने मेरे से उनको छीन लिया। न जाने मेरी शक्ति कहां चली गई। आप उस दिन की बात को याद करिए कि आपकी बुद्धि भी पाप कर्म में लग गई थी। आप दुर्योधन के साथ जुआ खेलने के लिए बैठ गए थे ना, सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था ना। उस दिन बीच द्यूत क्रीड़ा भवन में उन प्रभु ने हमारी लाज बचाई थी ना। राजा ध्रुपद के यहां उनकी कृपा से ही मैंने अनेक राजाओं को जीता। जब कृष्ण मुझे पुकारा करते थे तो कहा करते थे, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुरुनंदन। वो कृष्ण अपने परम धाम में पधार चुके हैं। इतना जब सुना तो पांडव दुखी हो गए, मोहग्रस्त हो गए। और मोह अवस्था में पांडवों को गीता का ज्ञान याद आया, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति का मोह दूर होता है।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय।
जब कुंती ने सुना कि कृष्ण अपने परम धाम में पधार चुके हैं तो एकांत भक्त्या भगवत दोक्षजे निवेशितात्मो पर राम संस्रते, एकांत में जाकर के कुंती बैठ गई। और कुंती कृष्ण का ध्यान करते करते अपने देह को त्याग देती है। लेकिन जब अंदर पांडव गए और पांडवों ने जाकर के देखा कि हमारी मां कुंती का शरीर निश्चेष्ट पड़ा है, तो पांडवों ने मां का अंतिम संस्कार किया और 15 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर महाराज परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और पांडव महाप्रयाण के लिए उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। उत्तर की बेटी इरावती के साथ ही महाराज परीक्षित का विवाह हुआ और जिनके 4 पुत्र हुए जन्मेजय आदि। 3 बार महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किए, 1 बार दिग्विजय करने के लिए जब महाराज परीक्षित निकले, समस्त देशों को विजय प्राप्त करते हुए जब सरस्वती नदी के तट पर आए तो राजा ने क्या देखा, एक गाय और एक बैल दोनों पुरुष भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं। उस बैल का एक पैर है और गौ की आंखों में आंसू है। जब दोनों को देखा तो दोनों की बात सुनने के लिए महाराज परीक्षित एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गए। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उसी समय राजा परीक्षित ने क्या देखा कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथ वत दंड हस्तम च वर्षलम ददृशे नपलांचनम। एक व्यक्ति आया और जिसके एक हाथ में तो डंडा है, आकर के उसने डंडा तो मारा बैल को और लात मारी गौ को। ये जो बैल है ये साक्षात धर्म है और जो गौ है वो पृथ्वी है। जिस धर्म के चार पैर बताए हैं, थोड़ा ध्यान देना कौन कौन से पैर हैं धर्म के। पहला पग है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है तप और चौथा है पवित्रता। जिस व्यक्ति के जीवन में चारों बातें हों हम उस व्यक्ति को पूर्ण धार्मिक कह सकते हैं। जिसके जीवन में सत्य हो, जिसके जीवन में दया हो,
कि दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण।
आज महाराज परीक्षित ने जब देखा तो आकर के जिस व्यक्ति ने लात से गऊ को मारा और डंडा से बैल को मारा तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि तू कौन है। इसने कहा कि महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे कौन है तू? बोले मेरा नाम है कलिकाल। तो राजा ने कहा कि कली तू मेरे राज्य को छोड़कर के चला जा। कहां जाऊं महाराज, जहां तक सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक आपका राज्य फैला हुआ है और जहां भी मैं जाता हूं वहां आप मुझे धनुष मार लिए दिखाई देते हो। तो राजा परीक्षित ने विचार किया, बात तो ठीक है, कली को भी स्थान देना चाहिए। ये दीन बनकर के मेरी शरण में आया है तो कली को चार स्थान दिए। बहुत विचार करके महाराज परीक्षित ने, क्योंकि विचारशील व्यक्ति किसी कार्य को करने से पूर्व उस पर थोड़ा चिंतन अवश्य करते हैं, मंथन अवश्य होता है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनों और जग में हो तो हंसाए। तो किसी बात को कहने से पूर्व और करने से पूर्व हमको तीन बार अवश्य विचार करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने बहुत विचार करके कली को चार स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना। महाराज ने विचार किया कि कली के अंदर सब अवगुण हैं, ये अवगुणों की खान है, जितने भी पाप हैं, जितने भी अधर्म हैं, जितनी भी बुरी बातें हैं सब कलिकाल में होती हैं। लेकिन एक इस कलिकाल का महान गुण भी है
कि कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां ययतो मखैः द्वापरे परचर्यायां कलौ तद्धर कीर्तना।
ये बात हमको समझ लेना चाहिए कि सत्युग में परमात्मा की प्राप्ति होती थी ध्यान से। त्रेता में भगवान राम का दर्शन मिला यज्ञ आदि कर्म से।
और द्वापर में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ सेवा भाव से। लेकिन कलिकाल में हम लोग कलिकाल में बैठे हैं, कलिकाल में प्रभु की कृपा का एक ही मार्ग है, वो है भगवान के नाम का आश्रय, नाम संकीर्तन। काम करते रहो और नाम एक क्षण को भी अपने प्रभु के नाम को त्यागो मत, नाम को विसारो मत। कलौ केशव कीर्तनात् यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत कहती है कि जो फल तप से प्राप्त नहीं होता, जो फल यज्ञ यज्ञादि कर्म से प्राप्त नहीं होता, योग से प्राप्त नहीं होगा, उस फल की प्राप्ति सहज में केवल भगवान के नाम का आश्रय लेकर के इस कलकाल में जीव धन्य हो जाता है। तो महाराज परीक्षित ने ये विचार करके चार स्थान कली को प्रदान किए। पहला स्थान कौन सा दिया? द्योतम। अब ये ध्यान देने की बात है कि कहां कहां पर ये कली बैठा है, ये ध्यान रखो। हम लोग ये तो कहते हैं कि कलिकाल चल रहा है, लेकिन कहां कहां पर कली का दर्शन होता है। कली माने कलह, कली माने अशांति, कली माने टेंशन, कली माने घबराहट, कली माने अशांति, कली माने स्ट्रेस, ये सब कली का लक्षण है। कहां कहां पर है? बोले द्योतम, व्यक्ति जब जुआ घर में जाएगा, जुआ खेलने जाएगा, तो हमेशा वहां मन अशांत रहेगा, वहां पर कली बैठा है। भागवत में लिखा है कि जुआ में कली का स्थान है। पानम, दूसरा स्थान बता दिया मदिरालय, शराब। लोग जिसे पी करके इतने बेसुध हो जाते हैं कि मौत के मुंह में भी चले जाते हैं, जिसे पीकर के। और मैं तो कहां करता हूं इस शराब का तीन अक्षरों का सरल अर्थों में मैं अपनी कथा में भाव बता देता हूं कि भैया जो व्यक्ति शराब पीते हो उनको तीन अक्षरों पर जरूर विचार करना चाहिए, शराब जरूर। बहुत देखिए, कभी कभी शब्द में ही अर्थ छुपा होता है। श रा ब, स मने जो सड़ाती है, र जो रुलाती है, ब जो बर्बाद करती है, उसे कहते हैं श रा ब। ये समझ लो, एक व्यक्ति दुबला पतला सड़क पर चला आ रहा था, एक दूसरा व्यक्ति बैठा था फुटपाथ पर। जो फुटपाथ पर व्यक्ति बैठा था उसने दुबले पतले व्यक्ति को देख करके कहा, भैया लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोर हो। तो उस दुबले पतले व्यक्ति ने कहा कि हाँ, बहुत दिन से बीमार चल रहा हूं, बहुत दवा दारू की लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो जो फुटपाथ पर व्यक्ति बैठा था उसने कहा, तो फिर एक काम करो, शराब पीना चालू कर दो। तो उस दुबले पतले व्यक्ति ने जो सड़क पर बैठा था, फुटपाथ पर बैठा था, उस व्यक्ति को कहा, क्या शराब चालू करने से क्या मेरी बीमारी चली जाएगी? तो जो फुटपाथ पर व्यक्ति बैठा था उसने कहा कि जब मेरी कोठी चली गई, मेरी कार चली गई, मेरी घरवाली चली गई, तो क्या तेरी बीमारी नहीं चली जाएगी? तो जो सड़ाती भी है, जो रुलाती भी है, और जो बर्बाद भी करती है, वो है शराब।
रोज अखबार में पढ़ लो, कोई ना कोई घटना, एक दो नहीं कई घटना आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो जहां पर मदिरालय है, जहां पर शराब है, वहां पर कली है, भागवत में बताया है। और तीसरा स्थान कहां? वैश्यालय। चौथा स्थान कसाई खाना, बदशाला। लेकिन चार स्थान देने के बाद कलिकाल को पांचवा स्थान भी मांगना पड़ा। कली को संतोष नहीं हुआ। कली ने राजा परीक्षित को कहा कि ये तो आपने अपनी ओर से स्थान दिया है, लेकिन मैं भी कोई आपसे मांग लूं जगह रहने के लिए। तो कहा कि कली क्या चाहिए बोलो। तो कली ने कहा कि महाराज मुझे सुवर्ण में स्थान और दे दीजिए। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभो। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि सोने में, अब चार स्थान तो मैंने दिए हैं अपनी ओर से, अब एक बात तो मुझे कलिकाल की भी माननी पड़ेगी। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि कली मैंने तुझे पांचवा स्थान सोने में भी दे दिया। अब लोग कहेंगे कि महाराज तब तो हमको सोना पहनना नहीं चाहिए। नहीं, सोना तो पहनना चाहिए। गीता में, श्रीमद् भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है तो भगवान ये कहते हैं कि धातुओं में सुवर्ण मेरा ही रूप है। सुवर्ण तो पहनो, लेकिन किस सुवर्ण के बारे में कहा? संस्कृत में सुवर्ण धन को भी कहते हैं। किस धन में, किस संपत्ति में कली बैठा है जो अन्याय से प्राप्त धन है, अनीति से प्राप्त जो धन है, उस धन से व्यक्ति सोना खरीद करके जब पहनता है, सोना पहनना मना नहीं है, लेकिन अनीति से प्राप्त धन और उस धन से व्यक्ति यदि सोना पहन करके रहे तो उस सोने में आकर के बैठ जाता है कलिकाल, कलह अशांति। सुवर्ण में दोष नहीं है, सोने में दोष नहीं है, सोना खूब पहनो, लेकिन अनीति से, अन्याय से प्राप्त जो धन और उस धन से हम जब सोना खरीद करके पहनते हैं तो उसमें आकर के बैठ जाता है कलिकाल, वो कलह का कारण हो जाता है, वो अशांति का कारण हो जाता है। महाराज परीक्षित चक्रवर्ती राजा थे और चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी उन्होंने इन सब वस्तुओं का त्याग किया। एक दिन अपने मंत्रियों की प्रार्थना पर महाराज परीक्षित राजकोष देखने के लिए गए। बहुत सुंदर मुकुट रखा हुआ था। तो एक मंत्री ने राजा परीक्षित को कहा कि महाराज आज आप इस मुकुट को पहनिए, बहुत दिन से संदूक में रखा है, आपके पूर्वजों के द्वारा ये बड़ा संभाल के रखा गया। तो एक मंत्री की प्रार्थना पर राजा ने उस मुकुट को पहन लिया। ये मुकुट था जरासंध का और जरासंध के पुत्र सहदेव से जबरदस्ती छीना था, अनीति से प्राप्त वो मुकुट था, धन था। 45 वर्ष तक महाराज परीक्षित ने कभी भी गलत कार्य नहीं किया अपने हाथ से। ये 45 वर्ष के जब महाराज परीक्षित हो गए तब ये गलती हो गई। एक मंत्री के निवेदन पर महाराज ने उस मुकुट को पहन लिया।